कमरे से बाहर आते हुए धर्मपाल जी की आंखों में आंसू थे। उनके लिए बेटे की ऐसी हालत देखना बहुत मुश्किल था। धर्मपाल जी की समस्या ये थी कि ये हाल उनके बेटे का ही नहीं, उनकी बेटी का भी था। उनकी बेटी भी अपनी दुनिया में जीने लगी थी। दिन में वो किसी गरीब बच्चों के स्कूल में पढ़ाने जाती थी और रात को अपना कमरा बंद करके बैठ जाती थी। धर्मपाल जी बाहर लॉन में आकर बैठ गए। वे बहुत परेशान थे। कहाँ वे लोग इतने खुश थे और आज उनसे दुखी कोई नहीं था। उन्हें ऐसे बैठा देखकर अनीता जी उनके पास चली आईं। आप जहाँ हैं, मैं आपको निशा के कमरे में देख रही थी, मुझे लगा आप उसके पास होंगे। अनीता, क्या करूं, बहुत परेशान हूं। मेरे दोनों बच्चों की खुशियों को किसी की नज़र लग गई। 7 साल हो चुके हैं इस बात को, मगर वे दोनों ही इस बात से निकलने को तैयार नहीं हैं। सही कह रहे हैं आप, आदित्य और निशा कब निकलेंगे इन सब चीज़ों से। मैं सोच रही थी कि मैं निशा को लेकर जयपुर चली जाऊं। जयपुर क्यों? सबसे बड़ी बात, क्या निशा मानेगी जयपुर जाने के लिए? धर्मपाल जी ने पूछा। वो मेरी सहेली है ना अपर्णा राणा, उसी की फैमिली में कोई फंक्शन है, वे लोग बुला रहे हैं, उसी के लिए जाना है। सोच रही हूँ निशा को भी साथ ले जाऊं। क्या निशा तुम्हारे साथ चलेगी? मैं ज़बरदस्ती लेकर जाऊंगी। अगर एक बार उसे कोई लड़का पसंद आ जाए तो वो ठीक हो सकती है। गौरव राणा, अपर्णा राणा का बेटा, की तो शादी हो गई थी ना? हाँ, शादी तो हो गई थी, मगर उसका तलाक हो गया। अब वो अपने बेटे के लिए फिर लड़की ढूंढ रही है। एक बात कहूँ अनीता, निशा को कोई ऐसा चाहिए जो उसकी केयर करे, परवाह करे, जो उससे प्यार करे, और ये चाहे कि निशा उसकी ज़िंदगी में आए। जब तक कोई सामने से कोशिश नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि धर्मपाल जी को ये आशा नहीं थी कि निशा और गौरव एक दूसरे को पसंद करेंगे। मैं बहुत परेशान हूँ इस लड़की से। वो 3rd क्लास स्कूल में पढ़ाने जाती है और फिर वहाँ से आकर बस अपने कमरे में बंद हो जाती है। खाना भी कमरे में खाती है, और कपड़े देखा है ना वो कैसे पहनती है, सूट सलवार साड़ी। अगर उससे कहो बेटा कुछ और पहन लो, तो कहती है मेहर को यही पसंद था कि मैं सूट पहनूं साड़ी पहनूं। मेहर उसके दिमाग से क्यों नहीं निकलता? अनीता जी कहने लगी। क्या कहें, मेहर और माना हमारे बच्चों के दिल पर ऐसे बैठे हैं कि उन्हें और कुछ दिखता ही नहीं। आदित्य को देख लो, वो बिजनेस तो बढ़ा रहा है, मगर खुद को इतना पीने लगा है कि उसे खुद का होश नहीं रहता। क्या करूं? सही बात है पापा, भाई का बहुत बुरा हाल है, अधिराज उनके पास आकर बोला। एक बात का शुक्र है कि उनका ध्यान काम में ज़रूर रहता है, इसलिए वो दिन को नहीं पीते। पूरा दिन काम करते हैं, बस रात को और पीते रहते हैं, और तब तक पीते हैं जब तक उनके होश गुम नहीं हो जाते। अगर उनसे कहो भाई आप कम पीना, तो कहते हैं मैं माना और बच्चे को भूल नहीं पा रहा हूँ, रात को वे दोनों मुझे बहुत याद आते हैं, इसलिए मुझे पीकर बेहोश हो जाता हूँ। रात निकल जाती है मेरी, फिर सुबह जल्दी उठते हैं, फिर काम पर लग जाते हैं, अपनी सेहत का उन्हें कोई ख्याल नहीं है। चलो अधिराज, आज बहुत रात हो गई है, अब तुम भी कमरे में जाओ, अनीता अधिराज से कहने लगी। और आप भी चलो, आप भी आराम करो, ऐसे तो आप भी बीमार हो जाओगे। धर्मपाल जी, अनीता जी और अधिराज अपने अपने कमरे में जाने लगे। अधिराज कमरे में गया तो नैना उससे बोली, आपको और सबकी तो फिक्र रहती है, अपने बेटे को भी तो देख लो, अब वे बड़े हो गए हैं। तुम्हारा बड़ा बेटा 10वीं कक्षा में है, कभी उसकी पढ़ाई का भी फिक्र कर लो। कभी तो तुम्हें आदित्य भाई की फिक्र रहती है, कभी निशा बहन की फिक्र रहती है, नैना उसे झिड़क रही थी। प्लीज़ नैना, मैं बहुत परेशान हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे सीधे सीधे बता सकती हो। अधिराज जाकर बेड पर लेट गया। सच में तुझ में और तुम्हारे भाई में बहुत फर्क है। एक आदित्य भाई है, वो अपनी मरी हुई पत्नी के लिए ही खुद को खत्म करने को तैयार है। मरी हुई पत्नी को अभी भी कितना प्यार करता है, उसी के लिए दिन रात रोता रहता है। पीता भी वो इसीलिए है कि उसे माना बहुत याद आती है, और उसका बच्चा जो पैदा भी नहीं हुआ, जिसे उसने देखा भी नहीं, वो उसे इतना प्यार करता है। और एक तुम हो जिसे अपनी जिंदा पत्नी भी दिखाई नहीं देती, और ना अपने बच्चों की कोई फिक्र है, नैना लगातार बोल रही थी। अनीता जी अपने कमरे में जाने से पहले निशा के कमरे में चली गईं। उसने निशा का दरवाजा खटखटाया। निशा ने दरवाजा खोल दिया। अभी तक सोई नहीं बेटा, बहुत रात हो गई है, अनीता जी उससे बोली। नहीं मॉम, सोने ही जा रही हूँ। ठीक है बेटा, सो जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। हाँ हाँ मॉम, कहो क्या बात है, निशा उनसे बोली। मैं जयपुर जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलती मुझे अच्छा लगता, और तुम भी कितने टाइम से कहीं बाहर नहीं गई, मेरे साथ घूम लेती? मॉम मैं आपके साथ जरूर चलती, मगर यह है कि बच्चों के एग्जाम नज़दीक हैं, अगर मैं छुट्टी लूंगी तो उनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं चाहकर भी आपके साथ नहीं जा सकती। छोड़ो स्कूल की नौकरी को, तुम किस लिए जाती हो वहाँ पर? तुमने इतनी पढ़ाई की है, अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर सकती हो, भाई के साथ काम कर सकती हो, अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए कोई अलग से काम शुरू कर देंगे तुम्हारे पापा। नहीं मॉम, उन बच्चों को पढ़ाकर मुझे बहुत खुशी मिलती है, उन बच्चों के साथ थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को भूल जाती हूँ। बेटा क्यों नहीं निकलती तुम उन सब बातों से? मेहर अभी जिंदा नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना तुम भी मर जाओ उसके लिए। अब आगे बढ़ो तुम, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है और जयपुर तो मेरे साथ चलो। उसकी मॉम उस पर गुस्सा हो रही थी। मॉम मुझे सोना है, उसने अपनी मॉम को कमरे से बाहर जाने के लिए कह दिया। अनीता जी गुस्से में कमरे से बाहर निकल आईं। वे मन ही मन मेहर को गालियां दे रही थीं। खुद तो मर गया मेरी बेटी को छोड़कर ऐसे बीच में दुखी रहने के लिए। उधर आदित्य कमरे में नशे की हालत में बेड पर पड़ा हुआ था। उसने अपनी आधी आंखें खोली हुई थी। उसे माना दिखाई दे रही थी। माना आ गई, मुझे कब से तुम्हारी वेट थी, सभी कहते हैं तुम चली गई। तुम मेरे पास हो ना, और मेरी बेटी कहाँ है, वो भी तुम्हारे साथ है ना, तुम बोलती क्यों नहीं माना? उसने सोने की कोशिश की। माना कहाँ हो तुम, ऐसे रोज गायब क्यों हो जाती हो, तुम अपने आदित्य से मिलने क्यों नहीं आती? वो बेड पर उल्टा पड़ा हुआ था, वो सोच रहा था माना को याद करके। मैं ऑस्ट्रेलिया क्यों गया, मैं तुम्हें जाने ही नहीं देता, मैं तुम्हें अपने पास रखता, तुम क्यों छोड़ गई मुझे? तुम्हें एक बार भी अपने आदित्य का ख्याल नहीं आया? और मेरा बच्चा कहाँ है, मेरी बेटी? उसे कहो उसके पापा उसे बहुत याद करते हैं, आ जाए वो मेरे पास।